नमस्कार भारत, 22 सितंबर दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया।
पीस एंड नॉर्मलाइजेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कैनॉट बी अचीव्ड विदाउट अ रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट।
भारत ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़े शब्दों में आलोचना की।
पाकिस्तान वांट्स डायलॉग व्हाइल होल्डिंग अ गन इन इट्स हैंड, अ टेररिस्ट गन इन इट्स हैंड। टॉक्स एंड गन्स डोंट गो टुगेदर।
करेंगे विश्लेषण नवाज शरीफ के संबोधन और भारत पाकिस्तान के संबंधों का। चलिए जेएनयू के मृतक पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर के गांव, जहां शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद सन्नाटा पसरा है। समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें भी होंगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर विवाद के समाधान के बिना भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सामान्य रिश्तों की बहाली नहीं हो सकती है। शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। बीती जुलाई में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए चरमपंथी बुरहान वानी को नौजवान नेता बताते हुए शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों की नई पीढ़ी भारत के खिलाफ खुद ही खड़ी हो गई है। भारत ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्विटर पर लिखा कि शरीफ ने चरमपंथी बुरहान वानी का महिमा मंडन किया, इससे पाकिस्तान का चरमपंथ से संबंध जाहिर होता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत सरकार ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। पीटीआई ने बताया है कि 7.87 अरब यूरो के सौदे पर कल दस्तखत हो सकते हैं। डील के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री ज्या ईव ली ड्रियान मौजूद रहेंगे। करीब 600 प्रवासियों को अवैध तरीके से ले जा रही एक नाव मिस्र के तट पर डूब गई। इस हादसे में कम 42 लोगों की मौत हो गई। बचाव में लगे अधिकारियों के मुताबिक अब तक 150 लोगों को बचाया जा चुका है। मिस्र के प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान को हर तरह की मदद मुहैया कराने की बात की है। हालांकि नाव में सवार रहे एक व्यक्ति के रिश्तेदार हसन सुलेमान ने आरोप लगाया कि मिस्र के प्रशासन ने बहुत देर से अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा, हम सुबह 5:30 बजे से अधिकारियों को बता रहे हैं कि नाव डूब रही है। उनका कहना था कि उनके पास रेस्क्यू के लिए नावें नहीं हैं। कोई अधिकारी अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। हमारे पास जो मछली पकड़ने वाली नावें थीं, उनके जरिए बच्चों को समंदर से बाहर निकाला गया। ये थे हसन सुलेमान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में मदद का सामान ले जा रहे काफिले पर हुए हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमरीका और रूस ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। अमरीका का मानना है कि ये हमला रूस ने किया, जबकि रूस इससे इनकार करता है। हालांकि तीखी नोकझोंक के बाद भी अमरीका और रूस आज न्यूयॉर्क में होने वाली सीरिया सपोर्ट ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने पर सहमत हो गए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो सीरिया में मदद का सामान दोबारा बांटने की तैयारी कर रहा है। सोमवार को हुए हमले के बाद इसे रोक दिया गया था। अमरीकी सेना इस बात की जांच कर रही है कि क्या इराक में अमरीकी सैनिकों पर केमिकल हथियार से हमला किया गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। नवाज शरीफ ने आरोप लगाया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में सेना कश्मीरी लोगों को गैर कानूनी तरीके से मार रही है और संयुक्त राष्ट्र को इन घटनाओं की जांच करानी चाहिए। भारत ने इस बयान के लिए पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की है। न्यूयॉर्क से सलीम रिज़वी की रिपोर्ट।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाए बगैर इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता।
पीस एंड नॉर्मलाइजेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कैनॉट बी अचीव्ड विदाउट अ रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट। पाकिस्तान फुली सपोर्ट्स।
नवाज शरीफ कह रहे थे, कश्मीर विवाद के निपटारे के बिना पाकिस्तान और भारत के बीच शांति और सामान्य रिश्तों की बहाली नहीं हो सकती। पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की आत्मनिर्णय की मांग का पूरी तरह समर्थन करता है, जिसका सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों के जरिए उनसे वादा किया गया है। अवैध कब्जे से आज़ादी के लिए उनका संघर्ष वैध है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में जारी हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षा बल कश्मीरी प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से मार रहे हैं। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के जरिए सारे मुद्दे सुलझाने के लिए तैयार है।
टॉक्स आर नो फेवर टू पाकिस्तान, टॉक्स आर इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज।
नवाज शरीफ कह रहे थे कि बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के हक में नहीं है, बातचीत में दोनों देशों का हित है। ये हमारे मतभेदों, खासकर जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने और तनाव में किसी तरह के इजाफे के खतरे से बचने के लिए ज़रूरी है। नवाज शरीफ ने भारतीय कश्मीर में जुलाई में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए चरमपंथी बुरहान वानी को कश्मीरी इंतफादा का प्रतीक भी करार दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने भाषण में उड़ी आतंकी हमलों का कोई जिक्र नहीं किया। उड़ी हमलों में 18 भारतीय सैनिक मारे गए थे और भारत इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है। भारत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण का जवाब देते हुए कहा है कि भारत आतंकवाद के साए में बातचीत नहीं करेगा। नवाज शरीफ के भाषण के बाद न्यूयॉर्क में ही मौजूद भारतीय विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया हुआ है और आतंकवादी की बंदूक हाथ में लेकर बातचीत करना चाहता है।
पाकिस्तान वांट्स डायलॉग व्हाइल होल्डिंग अ गन इन इट्स हैंड, अ टेररिस्ट गन इन इट्स हैंड। Talks and guns don't go together.
MJ अकबर का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तानी फौज ने भारत के कश्मीर के हिस्से पर कब्जा किया हुआ है।
The only occupation in Jammu and Kashmir, which is a part of India, is the occupation of a part of Jammu and Kashmir by Pakistan Occupation Army. The world also knows that Pakistan has indulged in ethnic cleansing of its own people.
MJ अकबर का कहना था कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों का कत्लेआम करता है। जब नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे तो इमारत के बाहर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। एक प्रदर्शनकारी सुचेता महेश्वरी ने उड़ी हमलों का जिक्र करते हुए कहा,
अमेरिका को फंडिंग नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की, बिकॉज पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर करता है, कोई नई बात नहीं है। पूरी पे जो आतंकी हमला हुआ है, गलत बात है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस को ये सुनना जानना जरूरी है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है।
अब 26 सितंबर को भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज महासभा के सम्मेलन को संबोधित करेंगी और उम्मीद की जा रही है कि वो अपने भाषण में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण का विस्तृत जवाब देंगी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस भाषण को किस तरह देखा जाए, क्या अर्थ निकाला जाए, उनके बयान को किस तरह समझा जाए, यही जानने के लिए मैंने अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी से बात की।
नवाज शरीफ का भाषण था तो यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन उसके ऑडियंस थी वो पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के जो सरबराह हैं, जनरल हैं, उनको ये सुनाना चाहते थे कि मैं अभी तक कश्मीर पर हार्ड लाइनर हूँ। और वो पाकिस्तान में उन लोगों को भी कि जो ये चाहते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान हमेशा बराबरी करे और आंखों में आंखें डालकर देखे, बकौल लोगों के, उन लोगों को वो मुतमइन करना चाहते थे। ये बात बड़ी वाजह है कि उनके भाषण को इंटरनेशनली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली, और यूनाइटेड नेशंस में भी ये बातें लोग 1947 से सुन रहे हैं। रह गया आतंकवाद का मामला, तो उस पर पूरी दुनिया मेरा ख्याल है कि मुत्तफिक है कि आतंकवाद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और पाकिस्तान को अब ये कारोबार बंद करना होगा। दुनिया सब कुछ जानती है, वो मीर तकी मीर का शेर है कि जाने ना जाने, कुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने।
हक्कानी साहब, एक बात बताइए कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मसले पर, कश्मीर के मुद्दे पर अपनी एक ही बात लगभग 70 सालों से लगातार दोहराते आ रहे हैं, आपको लगता है कि इस दोहराव से कुछ फायदा वाकई होता है?
देखें, अपनी बात को दोहराते रहना जो है वो कभी भी ताकत का मुजाहरा नहीं होता, कमजोरी होती है। ये बात भारत पर भी लागू होती है, क्योंकि भारत को भी कश्मीर के अंदर अपनी मुश्किलों को कभी ना कभी तो हल करना होगा और बात करनी होगी कश्मीर के जो राजनीतिक लीडर हैं उनके साथ, और देखना होगा कि क्या वहाँ ऐसी बेचैनी है जिसका कोई फायदा उठाता है। लेकिन रह गया पाकिस्तान का आतंकवाद, तो उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है दुनिया खुल के अब बोलती है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी उड़ी के वाकये की मजम्मत की है और कहा है कि पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन कैरी, उनके साथ जो नवाज शरीफ की मीटिंग हुई उसका जो बयान आया उसमें भी साफ साफ लिखा है कि सेफ हेवन यानी आतंकवादियों के लिए जो आपने पनाहगाहें बनाई हुई हैं उनको आप खत्म करें। तो अब ये बातें दोहराने का फायदा कोई नहीं है। भारत भी अगर ये दोहराए कि कश्मीर में कुछ भी नहीं है, लोग ऐसे ही बस सिर्फ पाकिस्तान के हाथों खराब हो रहे हैं, तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं होती। दुनिया को पता है कि कश्मीर में कुछ सियासी इश्यूज हैं और उनको भारत को हल करना होगा। और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहे कि पाकिस्तान आतंकवाद सिर्फ इसलिए करवाता है कि कश्मीर का मसला हल करवाना उसका मकसद है, तो इसकी भी अब कोई दुनिया की निगाह में अहमियत नहीं है। आखिर में तो पाकिस्तान को भारत के साथ बात करनी होगी। सिर्फ इंडियन मीडिया इसको कंडेम करेगा, पाकिस्तानी मीडिया इसकी तारीफ करेगा, इससे बाहर बात आगे बढ़ने वाली नहीं।
बस चलते चलते एक आखिरी सवाल का जवाब और चाहेंगे आपसे कि ये जो आम आदमी होता है जो चाय का ठेला लगाता है, पान खिलाता है, ऑटो चलाता है, अखबार बेचता है, एकदम साधारण आदमी, वो कैसे समझे कि भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ क्या है?
असल दिक्कत तो ये है कि पाकिस्तान में बाज लोगों ने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली है कि भारत पाकिस्तान को दिल से नहीं मानता, और दूसरी तरफ भारत में बाज लोगों ने ये बात दिल में बिठा ली है कि पाकिस्तान को भारत से अलग नहीं होना चाहिए था, 1947 में बंटवारा नहीं होना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ कि बंटवारा तो अब हो चुका, 70 साल हो गए, इसको बिल्कुल ऐसे करें जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि जैसे अगर कोई फैमिली है, अनडिवाइडेड फैमिली, अगर उसके अंदर कोई एक ये कहे कि भाई मैं तो अपना घर अलग बनाना चाहता हूँ तो उसको घर अलग बनाने दो, लेकिन उसको उसके साथ वैसा बर्ताव करो जैसे फैमिली को करना चाहिए, और उसको अपने खानदान को अपने परिवार को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान उसी परिवार का हिस्सा है जिसका भारत हिस्सा है, और उससे इनकार करने की सजा हम और आप भुगत रहे हैं। पाकिस्तान एक अलग देश है, आजाद देश है, और उसकी आजादी को कोई छीनना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान के कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक वो भारत से नहीं लड़ेंगे उनको अपनी आजादी महसूस नहीं होगी।
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण और भारत पाकिस्तान संबंधों पर रोशनी डाल रहे थे अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी। इससे पहले कल भारत ने जम्मू कश्मीर के उड़ी में हुए हमले के सिलसिले में पाकिस्तान को सबूत सौंपे। भारत का कहना है कि उड़ी में चरमपंथियों के पास से ऐसी तमाम चीजें मिली हैं जिनसे साबित होता है कि चरमपंथियों को पाकिस्तान से बाकायदा मदद मिली थी। अमरेश द्विवेदी की रिपोर्ट।
उड़ी हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़े ताजा तनाव के बीच विदेश सचिव एस जयशंकर ने बुधवार को भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को ऐसे कई सबूत सौंपे जिनसे पता चलता है कि उड़ी के हमलावरों को पाकिस्तान से पूरी मदद मिली थी। एस जयशंकर और अब्दुल बासित के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा,
हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं में हमें अनेक चीजों को बरामद किया है, जिसमें शामिल है आतंकवादियों के शरीर से बरामद जीपीएस उपकरणों के कोऑर्डिनेट्स, जिससे ये पता चलता है कि नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ किस स्थान से और किस समय की गई, और हमले के स्थान पर पहुंचने के लिए आतंकवादियों ने कौन सा रास्ता अपनाया। पाकिस्तानी मार के ग्रेनेड, संचार मैट्रिक्स शीट, संचार के उपकरण, पाकिस्तान में बना अन्य सामान जिसमें खाद्य सामग्री, दवाइयां और कपड़े शामिल हैं।
पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ बातचीत में भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान सरकार अगर सीमा पार से किए गए इन हमलों की जांच की इच्छुक है तो भारत उड़ी और पुंछ में मारे गए चरमपंथियों के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के नमूने भी उपलब्ध करा सकता है। इससे पहले भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उड़ी की घटना से जाहिर होता है कि कहीं न कहीं तो चूक हुई है, लेकिन ऐसी चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए।
We will definitely find out what went wrong. Repetition of wrongs does not repeat again and again.
हम जरूर पता लगाएंगे कि गलती कहां हुई। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी गलती दोबारा न हो।
ये थे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के शब्द। उड़ी में हुए चरमपंथी हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है। पिछले कई सालों में भारत के खिलाफ ये सबसे बड़ा चरमपंथी हमला था। भारतीय सेना का कहना है कि उड़ी के बाद भी सीमा पार से चरमपंथी हमले रुके नहीं हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमरेश द्विवेदी। और आइए लगे हाथ जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। वात्सल्य राय तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप जी, एक तो जो अभी आपने रिपोर्ट सुनाई अमरेश जी की, उससे रिलेटेड खबरें सारे अखबारों ने प्रमुखता से दी है कि भारत ने किस तरह से बासित को बुलाया और सारे सबूत देने की बात की और ये भी कहा कि डीएनए सैंपल भी दिए जा सकते हैं। ये सारे अखबारों ने इसको प्रमुखता से दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसी खबर को लीड खबर बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लीड खबर बनाई है उड़ी से जुड़ी हुई, लेकिन उसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान को प्रमुखता दी गई है। और पर्रिकर से संवाददाताओं ने कल पूछा उड़ी हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियार होने की बात की गई थी, तो पर्रिकर का कहना था कि खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करते हैं। हालांकि अखबार ने हेडिंग इस बयान को नहीं बनाया है, हेडिंग कहती है कि पर्रिकर ने कहा पाकिस्तान को दंडित करने के लिए गंभीर है भारत। तो ये पहली खबर ज़्यादातर अखबारों की है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने इससे जुड़ी कश्मीर से जुड़ी एक खबर दी है, उसको एंकर स्टोरी बनाया है। वो खबर ज़रा अलग है। अखबार का कहना है कि कश्मीर में युवाओं की एक और रैली हो रही है, अनंतनाग और पुलवामा में, दो जिलों में यह हुआ, लेकिन वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती के लिए रैली थी जिसके लिए 26,553 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खबर दी है, पनामा पेपर के बाद बहमास पेपर सामने आए हैं और इसमें 1,75,000 कंपनियों के बारे में खुलासा किया गया है। इस लिस्ट में भारत से जुड़ी हुई भी 475 फाइलें हैं, जो टैक्स हेवन वाली बात थी, आपको याद होगा, श्रोताओं को भी याद होगा। इसके अलावा एक बड़ा फैसला कल कैबिनेट ने लिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया कि रेल बजट और आम बजट अब एक साथ पेश हुआ करेगा। 92 साल पुरानी परंपरा थी, कई अखबारों ने इसको पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, बात है वो पते की, कि एक पता बदल गया है रातों रात, वो है प्रधानमंत्री के घर का पता। जो रेस्कोर्स रोड था उसका नाम बदल कर दिया गया है लोक कल्याण मार्ग।
अच्छा,
तो जनसत्ता ने इससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प कार्टून लगाया है। लोक कल्याण का शॉर्ट फॉर्म होता है LK। तो LK आडवाणी साहब के घर के बाहर कई लोग खड़े हुए हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों यहाँ आ रहे हैं। तो वो जवाब देते हैं कि 7 रेस कोर्स का नाम अब 7 LK मार्ग हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में आज से पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये भारत का 500वां टेस्ट है। इस टेस्ट की भी स्पेशल कवरेज की है तमाम अखबारों ने। हिंदू ने एक फोटो छापा है 1932 में, जो पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने खेला था उसके खिलाड़ियों का।
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की सुर्खियां और तमाम खबरें विस्तार से बताने के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
22 सितंबर का नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आज है गुरुवार और वक्त हुआ है 6:47। और अब जिक्र उस खबर का जिसके सामने आने के बाद पहला सवाल यही उठा कि दिल्ली क्या दिलवालों की नहीं है, जहां कोई राह चलते किसी की मदद तक नहीं करता। जी हां, हम बात कर रहे हैं 21 साल की युवती करुणा की, जिसे एक व्यक्ति ने सरेआम धारदार हथियार से इतना मारा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। BBC संवाददाता दिव्या आर करुणा के परिजनों से मिलकर आई हैं, सुनिए ये रिपोर्ट।
कहीं रुदाली है और कहीं गुस्सा। करुणा की हत्या के बाद उसके घर के बाहर सैकड़ों औरतें और मर्द जमा हैं और माँ राज बेटी की आंखें रो रो कर पथरा चुकी हैं।
उन्होंने कही मुझे कोई शादी नहीं करनी है, वो पीछा नहीं छोड़ता था, वो कहता मैं तुझसे ही शादी करूंगा।
करुणा की माँ का कहना है कि करुणा और सुरेंद्र सिंह केवल दोस्त थे, पर एक साल से वो उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगा, उसका पीछा करता और मारपीट भी। आखिर उसने करुणा की हत्या कर दी। उस आरोप में अब उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को आज ही इंसाफ चाहिए, आज ही के दिन इंसाफ चाहिए। जैसे मेरी बेटी को बेरहमी से मारा है, हम भी इसको बेरहमी से ही मारना चाहते हैं।
दिल्ली के बुराड़ी में करुणा के पिता की दुकान थी, जिसके बगल में ही सुरेंद्र सिंह की भी दुकान थी। सुरेंद्र का घर में आना जाना था और परिवार के साथ दोस्ताना रिश्ते थे, पर मंगलवार को सामने आए CCTV फुटेज में एक अलग ही सच्चाई दिखती है। वीडियो में साफ तौर पर सुरेंद्र सिंह को करुणा पर कैंची से करीब 20 बार वार करते देखा जा सकता है।
यहाँ की पुलिस तो बहुत ज्यादा गलत है, यहाँ नहीं सुनवाई होती, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे।
करुणा के परिवार वालों का आरोप है कि सुरेंद्र सिंह के पीछा करने और शादी के दबाव की शिकायत लेकर वो पुलिस के पास गए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी कुछ हो जाता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन इलाके के DCP मधुर वर्मा ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा,
हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई हुई थी। एक शिकायत हमें मिली थी लगभग 4-5 महीने पहले, उसकी इंक्वायरी के लिए हमारा पुलिस परिवर्तन स्टाफ से लेडी हेड कांस्टेबल ने लड़की को मिली, टेलीफोन पे बात करी, उसके घर में विजिट किया। घर में विजिट किया तो उन्होंने इसको कहा कि हम इस कंप्लेंट को अपने लेवल पे डील करेंगे।
करुणा के पिता के मुताबिक समझौते तक बात पहुंची ही इसलिए क्योंकि उन्हें पुलिस से मदद नहीं मिली। इसी वजह से वो सुरेंद्र के पिता प्रेम सिंह के पास गए। उनका कहना था कि सुरेंद्र के पिता ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उनका बेटा इनकी बेटी को आगे से परेशान नहीं करेगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में दी अपनी शिकायत वापस ले ली। हम जब प्रेम सिंह के घर पहुंचे तो उन्होंने माइक पर बात करने से मना कर दिया। कहा वो शर्मिंदा हैं। माना कि बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर करुणा का परिवार उनके पास आया था और उन्होंने बेटे को पीछा करने और परेशान करने से रोका भी था। अब वो हैरान थे कि उनके बेटे ने ऐसा खौफनाक हमला किया, क्योंकि उनके मुताबिक वो तो कॉकरोच तक नहीं मार सकता था। पर इस सबसे करुणा के जानने वालों का गुस्सा कहां दूर होता। और उसका सामना करना पड़ा वहां पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को।
मैंने खुद बहुत बार देखा है कि पुलिस ये कहती है कि रेप तो नहीं हुआ, छेड़खानी ही तो हुई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत समस्या है। और अगर इस लड़की को उस वक्त जब ये पुलिस में गए थे अगर उस वक्त रिलीफ मिल गया होता तो शायद आज वो मरती नहीं। उसके ऊपर भी एक्शन की जरूरत है। दिल्ली महिला आयोग आज एक नोटिस इशू करेगा दिल्ली पुलिस को और हम ये जानना चाहते हैं कि कब कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन हुआ और अगर एक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है। Somebody has to be accountable.
करुणा की माँ बताती हैं कि वो नर्स बनना चाहती थी पर घर के खर्च में हाथ बटाने के लिए कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में पढ़ाने की नौकरी करने लगी। बोली अब जब करुणा ही नहीं है तो बस उन अधूरे सपनों की यादों के सहारे ही जीना होगा। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या के लगभग 20 साल होने के बाद भी देश की प्रमुख एजेंसी CBI ने मुख्य अभियुक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन की भूमिका पर अपनी रिपोर्ट अभी तक दायर नहीं की है। इस हत्याकांड में 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के बाद चंद्रशेखर के गाँव बिंदुसुर में लोग बेहद डरे हुए हैं। BBC संवाददाता सलमान रावी ने चंद्रशेखर के बिंदुसर गांव का दौरा करके ये रिपोर्ट भेजी है।
सिवान के बिंदुसर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे लोग चिंता में डूबे हैं, सभी खामोश हैं। ये गांव है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर का और पीपल के पेड़ के ठीक सामने उनके घर पर आज भी उनके नाम का बोर्ड टंगा हुआ है। लाल दरवाजे पर टंगा ये बोर्ड गांव के लोगों को उनकी याद दिलाता रहता है। तो आखिर गांव में इतनी खामोशी क्यों है, मैंने उनके चचेरे भाई पारसनाथ सिंह से पूछा।
खौफ का माहौल है, सब लोग डरे हुए हैं। हाँ, चारों तरफ हमारे गाँव में भी डरे हुए हैं।
क्यों?
अपराधी, वो एकदम अपराधी चरित्र का आदमी है। जो भी उसके कुछ भी सच बात लोग कहेंगे तो उसको दुख लगेगा, दुख लगता है तो वो हमेशा उसके गुंडे जो है धमकाते उमकाते हैं, हमेशा उसके गुंडे तो हमेशा डराते धमकाते रहते हैं। लोग शाम को 7 बजे ही 8 दिन से लौट करके भागे आते हैं डर के वजह से। शनिवार के बाद जिस दिन से अब आया है उस दिन से 7 बजे के बाद लोग बाजार से भाग करके गाँव चले आते हैं।
वर्ष 1997 में 31 मार्च को सिवान के JP चौक पर एक धरने के कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित 5 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के बाद बिंदुसर के लोगों में खौफ है। चंद्रशेखर के पोते सुभाष कहते हैं,
सिवान में रहता है, शहाबुद्दीन को आने से सिवान में दहशत का माहौल है।
अभी यहाँ पर
सिवान के आम जनता में दहशत का माहौल रहता है।
चंद्रशेखर हत्याकांड की जांच CBI कर रही है और इस हत्याकांड में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन की भूमिका को लेकर अभी भी CBI की जाँच पूरी नहीं हो पाई है। सुभाष सिंह कहते हैं,
उस हत्या में 3 अभियुक्त को सजा हुआ है, उसमें मेन मुजरिम जो थे उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उस केस में उनको भी सज़ा होना चाहिए। केस चल रहा है, सीबीआई जांच हुआ था, अभी सीबीआई लटका हुआ है, उसका फाइनल नहीं हुआ है।
वहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के जिला सचिव नईमुद्दीन अंसारी का कहना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तभी से उनका संगठन सीबीआई की जांच में तेजी लाने की मांग कर रहा है।
दरअसल सीबीआई की जांच में चार लोगों की सजा हुई है, मुन्ना मियाँ, रुस्तम मियाँ, ध्रुव जायसवाल और मिंटू मियाँ को। स्पेशल शाहबुद्दीन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीबीआई का। सीबीआई ने भी, वो बीजेपी की भी सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हम लोगों ने डिमांड किया कि इसको जल्दी जाँच करवाया जाए। फिर बीच में कांग्रेस के 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर बीजेपी की आई है। बीजेपी के लोग तो अपराध के खिलाफ लड़ने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। दरअसल अपराध के खिलाफ अपराधियों को वही लोग प्रश्रय देते हैं, वही लोग बढ़ावा देते हैं, अपराध के खिलाफ लड़ने के वो नाटक करते हैं।
सीबीआई की जांच को लंबा खींचता देख अब उनके परिजन जाने माने वकील प्रशांत भूषण से मिलकर मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने का अनुरोध करने का मन बना रहे हैं। सुभाष सिंह कहते हैं,
हम ये भी आग्रह करेंगे प्रशांत भूषण से कि इस केस, जिस तरह चंदा बाबू का केस लेकर कोर्ट में फाइल किया, चंद्रशेखर का भी केस को लेकर कोर्ट में फाइल करें। और उस
चंद्रशेखर की हत्या को लगभग 30 साल होने को आ रहे हैं। इसी साल 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि चंद्रशेखर के परिजनों के लिए इंसाफ का इंतजार अभी भी उम्र भर की सजा जैसा ही साबित हो रहा है। सलमान रावी, बीबीसी सिवान।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में भारतीय टीम आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मुकाबले में स्पिनर्स की निर्णायक भूमिका रहेगी, जिसके चलते दोनों टीमों की तरफ से प्लेइंग 11 में 3-3 स्पिनरों को मौका मिलने की उम्मीद है। भारत के लिहाज से ये मुकाबला ऐतिहासिक है, क्योंकि ये उसका 500वां टेस्ट मैच होगा। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम आमतौर पर 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरती रही है, लेकिन इस बार कप्तान ने 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरने के संकेत दिए हैं।
पहले हमने 5 बॉलर, प्योर बॉलर्स खिलाए। श्रीलंका में हमने 4 बॉलर्स और एक ऑलराउंडर खिलाया। वेस्ट इंडीज में हमने फिर 5 बॉलर के साथ खेला। लास्ट टेस्ट में हम 4 बॉलर के साथ उतरे थे, लेकिन वॉश आउट हुआ। तो वन ट्रैक कॉम्बिनेशन या वन ट्रैक माइंड लेके जाना, आई डोंट थिंक इट्स लॉजिकल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं आप फिर।
भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चिकनगुनिया के चलते इस मैच से बाहर हो गए। इस वजह से भुवनेश्वर कुमार के खेलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं टिम साउदी और जिमी नीशम की चोट के चलते कीवी टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 को लेकर मशक्कत करनी पड़ेगी। मेहमान टीम के अपने 3 स्पिनर ईश सोढ़ी, मिचेल सेंटनर और मार्क क्रेग के साथ मैदान पर उतरने की उम्मीद है। ट्रेंट बोल्ट का खेलना तय है, जबकि डग ब्रेसवेल की बजाय नील वेगनर को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। परिस्थितियों और आंकड़ों के लिहाज से मैच में भारत का पलड़ा भारी दिखाई देता है, ऐसा भारत के पूर्व खिलाड़ी विजय दहिया भी मान रहे हैं।
घर में भारतीय टीम को पटकने देना बहुत मुश्किल काम है। एक आपको अपना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम अपने अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपने दर्शकों के सामने खेल रहे हैं।
इस साल हुए विश्व T20 में कीवी स्पिनरों ने भारत को हार के लिए मजबूर किया था, ऐसे में विराट कोहली की टीम उन्हें टेस्ट प्रारूप में भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7। कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर विवाद के समाधान के बिना भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सामान्य रिश्तों की बहाली नहीं हो सकती है। वहीं भारत ने कहा है कि बंदूक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक भारत सरकार ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। करीब 600 प्रवासियों को अवैध तरीके से ले जा रही एक नाव मिस्र के तट पर डूब गई। इस हादसे में कम 42 लोगों की मौत हो गई। सीरिया में मदद का सामान ले जा रहे काफिले पर हुए हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और रूस ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो सीरिया में मदद का सामान दोबारा बांटने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी सेना इस बात की जांच कर रही है कि क्या इराक में अमरीकी सैनिकों पर केमिकल हथियार से हमला किया गया था। शुरुआती जांच में इराकी ठिकाने पर दागे गए गोले में मस्टर्ड एजेंट होने की पुष्टि की गई थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में नतीजे नेगेटिव मिले थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। एक घंटे के बाद फिर हाजिर होंगे विश्व भारती लेकर। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।